अगली टिप लीजिए, दुनिया इससे बहुत बेहतर है कि इस पर गम किया जाए। यानी ऐसे लगता है कि खुरच खुरच कर हमारे दिमाग से इस दुनिया के लफ्ज़ को निकाला जा रहा है। इब्नुल मुबारक मशहूर व मारूफ आलम दीन थे, कहते हैं कि अदी बिन जैद का कसीदा मुझे इससे ज़्यादा महबूब है कि अमीर ताहिर बिन अल हुसैन का महल मुझे दे दिया जाए। यानी अपने वक्त के बड़े अमीर कबीर शख्स का महल कोई दे मुझे, यह तकाबुल में कहे कि ये कसीदा सुन ले, तो मैं कसीदा सुनूंगा, महल को नहीं देखूंगा। और अदी का कसीदा मशहूर है, इसमें ये मिसरे भी हैं जिनका मफहूम क्या है, दूसरों की मुसीबतों पर खुशी मनाने वाले, क्या तुझसे इस बात का कोई पैमान बांधा गया कि इन जैसी मुसीबत तुझ पर नहीं पड़ेगी, क्या जमाने ने तुझसे कोई वादा कर लिया कि तू परेशानी और मुसीबतों से महफूज रहेगा, फिर ये खुशी किस लिए। देखिए, समझाने का बस अंदाज है, पता सब कुछ होता है, बस दुआ करे दिल में उतर जाए बात। वो कहते ना, अंदाजे बयां गरचे बहुत शोख नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इसी तरह सही हदीस में आता है कि अगर दुनिया अल्लाह के नज़दीक मच्छर के एक पर यानी उसकी टांग के बराबर भी कीमत रखती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को पानी का घूंट भी ना पिलाता उसमें से। यही दुनिया की कीमत और यही इसका वजन है, तो लिहाजा इस पर और इसकी वजह से फिर घबराहट किस लिए। खुशबख्ती की बात तो ये है ना कि आप अपने ऊपर, अपने मुस्तकबिल पर, घर वालों पर और अपनी मईशत पर अमन व अमान का एहसास करें कि शुक्र है हर तरफ अमन है। ये चीज़ें इंसान की अल्लाह ताला पर ईमान और इसकी क़ज़ा व कदर पर राज़ी होना और कनात और सब्र जैसी सिफात से ही हासिल होती हैं। तो क्या सीखा फिर हमने कि दुनिया बड़ी हकीर है, इसके जाने पे गम ना कीजिए और इसके मिलने पे खुशियाँ ना मनाइए। हकीर कैसे, अल्लाह की नज़र में बेवकूत है, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है और इसका ईमान बढ़ाने में मददगार है। दुनिया और दुनिया के लिए ईमान बेच देता है बंदा, यानी दुनियादार जो होता है ना वो दुनिया के लिए ईमान ही बेच देता है। और दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है। और अदी बिन जैद का जो कसीदा तذکرہ हुआ उसका, तो वो कहते हैं कि मुसीबत पर खुशी मनाने वाले, क्या तुझसे इस बात पर कोई वादा लिया गया कि इन जैसी मुसीबत तुझ पर नहीं पड़ेगी। मुराद ये कि तू इतना खुश क्यों है। असल में देखिए ना, शायरी में मिजाज तो बड़ा लतीफाना सा होता है ना, कि क्या हो गया भाई, किस बात की खुशियाँ मना रहे हो, ये मुराद है। और इसी तरह अल्लाह ताला का ये कॉल सूरत हदीद 20 का कि लमल हयात दुनिया लाइबन वजीनतुम व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुम फिल अमवाली वल औलाद। चार चीज़ें हैं, खेल, तमाशा, जीनत और फ़ख्रो तकासुर। ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसे ही, बचपन में खेल प्यारा होता है, जवान हो तो लहव अच्छा लगता है, भरपूर जवान हो तो जीनत अच्छी लगती है, और 40 से ऊपर जाएं तो फ़ख्र ही फ़ख्र और तकासुर रह जाता है, तेरे इतने माल मुरब्बे और मेरे इतने, तेरे इतने पोते मेरे इतने पोते और ये वो, और दुनिया से चला जाता है इंसान। किसी को यहाँ रुकते तो मैंने अपने देखा नहीं है, सभी चल रहे हैं या चलती ट्रेन में से उतर रहे हैं। तो फिर अल्लाह के नबी की हदीस याद रखिए, सिलसिला सहीहा की 1084, अगर अल्लाह के यहाँ दुनिया की कदर और कीमत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किस में से किसी काफिर को पानी का एक घूंट भी ना पिलाता, क्योंकि बेकार चीज़ तो हर एक को दी जाती है, अच्छी चीज़ संभाल ली जाती है। तो जितनी भी बातें हुई, इनमें से कुछ चीज़ें जो हमने सीखी, पहली बात है कि अल्लाह की मदद की उम्मीद रखनी चाहिए, अपने ऊपर अपने घर पर अमन और अमान का एहसास पैदा करना चाहिए। यदि अपने घर बार में अमन कायम करने की कोशिशें करें, हर हाल में अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए, कज़ा और कदर पर राज़ी रहें, किसी भी मुसीबत पर नहीं घबराना, यानी किसी पे भी नहीं। अच्छा, कुछ है किसी पे घबराते हैं, किसी पे नहीं, आप कहिए मैंने किसी पे भी परेशान नहीं होना। फिर इसी तरह अगली टिप लीजिए, ईमान बिल्लाह के साथ हुज़न की क्या गुंजाइश। क्या पता चला, जितना अल्लाह ताला पर ईमान बढ़ता जाएगा उतना आपकी ज़िंदगी से गम, हुज़न और सैडनेस निकलती रहेगी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं बल्कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया कि इसने तुम्हें ईमान की दौलत दी। कभी सुनिए आपने सूरह हुजरात की आयत, अल्लाह ने ईमान दिया आपको मुझे, सोचिए तो सही, करना होता तो क्या करते, बादशाह भी होते दुनिया के, मिस वर्ल्ड के अंदर नाम भी लिख दिया गया होता आपका, लेकिन आपके से ईमान ना होता। और ईमान चाबी है जिससे जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा, तो क्या आप खुश होते। तो फिर सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत पे खुश हों, ये बड़ी नेमत की बात है और इसे अहले नज़र ही समझते हैं। کہ مسلمان کافر کو دیکھ کر یہ یاد کرے کہ اسے اللہ نے ہدایت دی اور نعمت اسلام سے بہراور کیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کافر جیسا نہیں بنایا جو رب تعالیٰ سے کفر کرتا اور سرکش ہے. اس کی آیت کے معاملے میں الحاد سے کام لیتا ہے، اس کی صفات کا انکاری ہے، اپنے آقا و مولا خالق و رازق سے لڑتا ہے، اس کے رسولوں اس کی کتابوں کی تکذیب کرتا ہے اور اس کے احکامات سے منہ پھیرتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ آپ مومن و مسلم ہیں، موحد ہیں، اللہ اور رسول اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں اگرچہ کچھ کوتاہی ہی کی جاتی ہو، کیونکہ یہ اپنے آپ میں اتنی بڑی نعمت ہے جو انمول ہے، جسے مال کے ذریعے خریدا نہیں جا سکتا، نہ سوچا جا سکتا، اور نہ مادی چیزوں میں اس کی کوئی تشبیہ ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا، کیا وہ جو ایمان لانے والا ہے اور جو فاسق کے برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ حشر کی آیت ہے یہ. نہیں، یہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے. بس مفسرین کہتے ہیں کہ اہل جنت کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اہل نار کو دیکھیں گے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ چیزیں اپنی ضد اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. جی، ہم توحید اور شرک کہتے ہیں قبروں پہ جا کر ڈیسائیڈ ہوتی ہے. زندگی کا اصول بنائیے، اللہ کی رضا کے مقابلے میں کسی کی رضا نہیں چاہیے، اور اللہ کو ناراض کر کے کسی کی خوشی نہیں چاہیے. لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ الوہیت کی صفات اور صفات کامل میں منفرد یعنی یونیک ہے. اس کلمے کی روح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی تنہا رب مانا جائے، وہی اللہ واحد ہے. محبت، جلال، تعظیم، خوف اور امید، اور ان کے جو بھی تابع ہیں یعنی جو ان کو فالو کرتے ہیں، مثلا توکل، انابت، رغبت، خوف، سب اسی کے لیے خاص ہوں. یعنی جب دل میں اللہ کی محبت اور اس کی امید خوف ہو نا، تو اسی کے اندر سے یہ سب تحفے ملتے ہیں. تو لہٰذا اس کے سوا کسی سے محبت نہ ہو. کیوں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ساری محبتیں اسی کی محبت کے تابع ہوں، ان سے ان کی محبت میں اضافہ ہوتا ہو. کیوں؟ صورت توبہ میں بھی اور اس سے پیچھے بھی رشتوں کی ایک لسٹ ہے، 9 چیزیں تقابل میں رکھی گئیں، جس میں کل ان کا نا با حکم و بنا حکم اور اسی طرح کچھ بے جان چیزوں کا نام ہے. 8 چیزیں اس میں، 5 جاندار تو 3 بے جان. ان کو اللہ کے مقابلے پہ لاتے ہو تو اللہ سے پھر خوف کھاؤ کہ وہ تم پر جو کرنے والا ہے وہ تمہیں ابھی پتہ بھی نہیں ہے. تو کیا پتہ چلا کہ ساری محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع کیجیے. کسی کا خوف اتنا نہ ہو جتنا اللہ کا، کسی کی امید اتنی نہ ہو جتنی اللہ کی، کسی پہ اتنا توکل نہ ہو جتنا اللہ پہ، کسی کی رغبت نہ رکھیے جتنی اللہ کی رغبت. اور خوف تو بس ایک نام ہے، قسم کھائیں تو اسی کی کھائیں، نظر مانی جائے تو اسی کی مانی جائے، توبہ کی جائے تو اسی سے کی جائے، حکم مانا جائے تو اسی کا مانا جائے، ثواب کی امید اسی سے ہو اور تکلیفوں میں اس سے مدد طلب کی جائے، پناہ اس کی پکڑی جائے، سجدہ اسی کو ہو، ذبح اسی کے لیے اور اسی کے نام پر کیا جائے. اور ان تمام باتوں کا یہ جامع کلمہ کی عبادت کی تمام تر اقسام صرف اور صرف اسی کے ساتھ. قل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. جب آپ اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتیں آپ کے شامل حال ہونے لگتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں لیتا ہے. تو پھر کہیے کہ ایمان باللہ کے بعد اب کیا گنجائش ہے حزن و ملال کی؟ ساری زندگی جس چیز کی خاطر اپنے آپ کو پریشان رکھا، وہ تو آج ہاتھ سے جانے ہی والی ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا جب ہاتھ سے جاتی ہے تو ریت کی طرح پھسلتی ہے زندگی سے، اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا. اور حسرتیں اور پچھتاوے اور کمی پیشی، کبھی دنیا سے جاتے کسی کو دیکھا؟ اور آج تو جوانوں کو بوڑھوں سے پہلے جاتے انسان دیکھتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی فکر کی جائے، اس سے پہلے کہ ہم پریشان اور ہوں، ابھی جو موجودہ چیزیں اس کو ٹیکل کیجیے. دنیا کی محبت، دنیا کی طلب، سب کچھ، دنیا میں پا جانے کا شوق اور ذوق غموں کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. اس سے اپنے آپ کو نکالیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے दिल का गनी बना देगा आपको, यानी गिना मिलता ही उस वक्त है जब दिल से दुनिया निकलती है। हम कहाँ वो लोग के हमारे गम गमे आखरत होते, हम कहाँ वो लोग के जिनकी फिक्रें फिक्रे आखरत होती। और इसी तरह से हम तो दुनिया में आए, दुनिया में जिए और दुनिया से जाने का ही गम मारे रखता है। तो आपके मेरे ईमान का ये एक ऐसे टेस्ट होता है कि हम कितना दुखी हैं और कितने खुश हैं। तो कहिए कि सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की मोहब्बत की कुंजी है। सवाल यह कि ईमान बिल्ला से क्या मिलेगा। पहली बात है कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ गहरा होगा, तकदीर पर राज़ी रहेंगे, नफ्स पर काबू पाएंगे और बिलाखिर जन्नत के वारिस बनेंगे। वलाइका हुमुल वारिसून। और क्या मिलता है? कुछ इनामात हैं ईमान बिल्ला के, बिल्कुल हैं। कुरान की आयतों के साथ नोट कर लें, सूरत अनफाल 19, अल्लाह की मायत मिलेगी। सूरत निसा 146, अजर अजीम मिलेगा ईमान बिल्ला से। अलम्बिया 88, गम और हुजन से निजात मिलेगी। मोमिन 51, दुनिया व आखरत में नुसरत मिलेगी। और आयत नंबर 4 और 5, ओलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यानी हिदायत याफ्ता और कामयाब होंगे। और 72 तौबा, जन्नत के वादे मिलेंगे। और क्या लेना है? लोग किन चीज़ों को पाने की तमन्नाओं में कि दुनिया जन्नत बन जाए तो वो दुनिया से चले जाते हैं, ये ख्वाब नहीं पूरा होता। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश और कीजिए, थोड़ा सा जोर और लगाइए, थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी को और प्रोडक्टिविटी में गुजारिए, एक दिन होगा आप जन्नत में होंगे। और याद रखिए कि रोज़े क़यामत काफिर की तो हसरतें होंगी। सूरत अल अहज़ाब 66 में आता है कि चेहरे आग में भुने जाएंगे, उलट पुलट करे जाएंगे। जैसे एक साइड पक जाती है कबाब की तो फिर दूसरी साइड ऊपर कर देते हैं। और उस वक्त अफसोस होगा, या लैताना, काश, अफसोस, हम अल्लाह और रसूलों की इताअत करते। इसके बरक्स मोमिन की निजात, सूरत हदीद 12, क़यामत के दिन तुम देखोगे कि मोमिन मर्दों और औरतों के नूर इनके आगे आगे और इनके दाई जानिब दौड़ रहे होंगे। और आज तुम्हें इन जन्नतों की खुशखबरी है जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें हमेशा रहना ये कामयाबी है। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, तीन खसलतें यानी आदतें ऐसी हैं कि जिनमें ये पैदा हो जाएं उसने ईमान की मिठास को पा लिया। एक तो ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाता है। पूछिए खुद से, ताकि अभी पता चल जाए कि ईमान की मिठास ज़िंदगी में है भी कि नहीं। दूसरा वो ये कि किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। और तीसरा ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। बुखारी की रिवायत 7379। तो फिर खुद से कहिए कि मैंने इस दुनिया में गम नहीं करना और अपनी आखिरत की फिक्र लगानी है। अगली टिप लीजिए, किसी आफत का लाहक हो जाना, यानी खुदा न खास्ता आप किसी आफत का शिकार हो गए, आपको तफव्वुक से नहीं रोक सकता। तफव्वुक के फोक से गलबा, बड़ाई। एक नाबीना अदीब का इंटरव्यू छपा था उकास नामी एक अखबार में, जिसका नाम महमूद बिन मोहम्मद अल मदनी था, जिसने अदब की किताबें दूसरों की आंखों से पढ़ी थी। तारीख की किताबों और मजल्लात और शशमाही रिसालों, यानी 6 माह के बाद जो आते हैं, और अखबार का मुतालिया किया। ऐसा भी होता कि एक दूसरे को पढ़कर सुनते सुनाते रात के 3-3 भी बज जाते। फिर वो ज़माना आया कि ये साहब इल्मो फ़न, इल्मो अदब और सहावत के मैदान में मर्जे खलायक हो गए, यानी मखलूक इनकी तरफ रजू करती थी। क्योंकि जो बंदा फिर मेहनत करता है ना, तो वो दूसरों की मजबूरी बन जाता है, दूसरे उसकी तरफ आते हैं। इसी तरह फिक्रा नामी एक अखबार में एक कालिम था, अशरकुल औसत अखबार का नाम है, और उसमें लिखने वाले जो थे वो लिखते हैं कि जालिमों के जुल्म, मक्कारों के मकर और जाबिरों के जबर पर सिर्फ 5 मिनट सब्र कर लो। कोड़ा जल्द ही टूट जाएगा, बेड़ियां कट जाएंगी, कैद शुदा लोग बाहर निकल आएंगे, अंधेरा छट जाएगा, आप बस सब्र और इंतज़ार करें। जी, कोई आप पे जुल्म कर रहे हैं ना, ज़्यादा दिन नहीं कर सकेगा, आप बी रिलैक्स्ड। और शायर जो कहता है वो क्या है कि कितनी ही मुसीबतें होती हैं जिनसे आदमी दिल तंग हो जाता है, जबकि अल्लाह के हाँ इससे खुलासी मिलने वाली होती है। रियाज में ये कहते हैं कि मेरी मुलाकात अल्बानिया के मुफ्ती आज़म से हुई, जिन्हें कम्युनिस्टों ने 20 साल तक कैद व मशक्क़त में रखा। इन्हें टॉर्चर किया जाता, भूखा प्यासा रखा जाता और मारा कुटा जाता। वो पंचवक्ता नमाज भी पानी की टंकी के गोशे में पढ़ते थे। इन सारी ज्यादतियों के बावजूद उन्होंने सब्र किया, अल्लाह से लो लगाए रखी, हत्ता के कुशादगी पैदा हुई और इन्हें रहाई मिली। अल्लाह की नेमत और फजल के साथ लौटे। यानी जुल्म ज्यादा देर नहीं रहता, लंबा भी लग रहा है तो एक दिन खत्म जरूर होगा। नेल्सन मंडेला की मिसाल भी ताज़ा है, जो जनूबी अफ्रीका के सदर बने। कौम की आज़ादी का आलम उठाने के बायस अफ्रीका पर मुसल्लत नस्लियत परस्ती, रेसिज्म, हुकूमत ने इनको 27 साल जेल में रखा, लेकिन उन्होंने जेल की दीवार के पीछे भी पूरे खलूस, साबित कदमी और इस्तकलाल से कौम की आज़ादी और जुल्मो जबर और इस्तिबदाद से इसे निजात दिलाने की मुहिम जारी रखी, हत्ता के दुनिया में कामयाबी मिल गई, इनका बड़ा नाम हुआ। और अल्लाह ताला का इरशाद है, हम यही इनके अमाल का पूरा बदला इनको दे देंगे। यानी दुनिया में भी अल्लाह की रहमत से सुनाई होती है। जमे रहिए, हक के साथ जुड़े रहिए, अल्लाह ताला की रहमत ज़रूर होगी। आप महसूस करके देखेंगे कि अल्लाह ताला कैसे फिर एक ऐसा वक्त ले आते हैं कि जब फिर दूसरे भी उसकी गवाही देते हैं। और इसी तरह फरमाया कि अगर तुम्हें जख्म लगे हैं तो तुम्हारी तरह दूसरे लोगों को भी, यानी दूसरों को भी जख्म लगे, लेकिन फ़र्क यह है कि तुम अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखते हो और ये लोग नहीं रखते। अगर तुम्हें जख्म पहुंचे तो लोगों को भी इसी तरह के जख्म लगे। गज़वे अहद के तनाजुर में सूरह आले इमरान की आयतें हैं 140 और इसके अराउंड। क्या पता चला कि मुसलमान को अगर अल्लाह के रास्ते में कोई तकलीफ आती है तो गैरों को भी आती है। अच्छे कामों में मेहनत है तो बुरों में भी है, लेकिन मुसलमान को तो हर तकलीफ के बाद अजर की उम्मीद है। तो क्या पता चला? परेशान ना हो। सवाल यह कि तफव्वुक क्या है? फौकियत से तरजीह देना, बड़ाई मानना, अहमियत देना। यानी एक दिन लोग ज़रूर आपको बड़ा मानेंगे, ये मुराद है इस सारी बात से। मुसीबतों पर सब्र बुलंद दर्जों की जमानत कैसे बनता है? नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, साबित कदमी से आज़ादी की जिद्दोजहद करते रहे, बिलाखिर जनूबी अफ्रीका के सदर बने। इसी तरह अल्बानिया के मुफ्ती आज़म 30 साल कैदे बा मुशक्क़त में रहे, भूख प्यास बर्दाश्त की, टॉर्चर हुए, लेकिन रहाई हुई और इज्जत और इकराम मिला। यानी जब बंदा परेशान होता है वो रुल जाता है, जैसे कहते हैं ना, कखों जितना हौला। लेकिन जब फिर इज्जत मिलती है तो संभलती भी नहीं है, शर्त यह है कि अल्लाह से ताल्लुक़ अच्छा हो। इसी तरह हज़रत यूसुफ कुएं में फेंके गए, बाप की मोहब्बत से महरूम हुए, जेल में डाले गए, सब्र किया और नफ्स पर काबू किया और बिलाखिर मिस्र के अजीज़ बनाए गए। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, प्यारों से थुतकारे गए। यानी अल्लाह के नबी कोई देखिए, अपने थे ना मक्का वाले, रिश्तेदार ही थे, लेकिन कुछ मामला अच्छा नहीं रहा। खाटी में मकसूर किए गए शाबी अबी तालिब 3 साल तक, मक्का से निकाले गए, ताइफ में पत्थर पड़े, मुस्तकिल मुश्किलों का शिकार रहे, लेकिन सब्रो बर्दाश्त का पैकर थे। बिलाखिर मक्का फतह हुआ। तो आप और मैं तो उनके पाँव की खाक के बराबर भी ना हो। हम छोटी छोटी बात पे इतने बेसब्रे क्यों होते हैं? और नहल 127 नोट कर लीजिए, वसबिर वमा सब्रु का इल्ला बिल्ला। आप सब्र करें, बग़ैर तौफीक इलाही के आप सब्र कर ही नहीं सकते। और इनके हाल पर रंजीदा ना हो, और जो मकरो फरेब ये करते हैं इनसे दिल तंग ना हो। और इसी तरह आपने फरमाया, मेरे पास जो माल होता है तो मैं तुमसे दरेग नहीं करता, जो सवाल से बचे अल्लाह इसे बचाता है, और जो अपने दिल को बेपरवाह रखे अल्लाह इसको बेपरवाह कर देता है, और जो सब्र की आदत डाले इस पर सब्र आसान कर देता है, और कोई अता इलाही बेहतर और कुशादगी वाली सब्र से जायद नहीं। जैसे मुस्लिम की रिवायत है 2424। तो सब्र बड़ी प्यारी चीज़ है, इसको ले लीजिए। हम कहते लो सब्र, गॉड गिव मी पेशेंस बट सून। तो लिखिए, एक जेम दूंगी, सब्र सब्र से ही आता है। हम उसको बेसब्री से मांगे तो वो सब्र नहीं रहता। चलिए अगली टिप लीजिए, इस्लाम को पहचान लिया तो गम की कोई बात ही नहीं है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह, नेमतों में से एक बड़ी नेमत तो आपको मिली गई है, गम क्यों करते हैं? वो लोग कैसे बदबख्त हैं जो इस्लाम को नहीं जानते, ना इसकी हिदायत पाते हैं। इस्लाम को ज़रूरत है कि इसके पैरोकार और अलम बरदार, यानी इसका झंडा उठाने वाले, इसके तारुफ की एक ज़बरदस्त आलमी मुहिम छेड़ दें, क्योंकि वो एक अजीम पैगाम है। बस इसकी दावत भी तरक्की याफ्ता, महजब और जाज़िबे नज़र होनी चाहिए, کیونکہ انسانیت کی سعادت دین حق کی پیروی میں ہے. جو لوگ اسلام کے علاوہ دین چاہتے ہیں تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا. آل عمران 85 ہے, چوتھے پارے کا بالکل اینڈ ہے, یعنی لاسٹ رکوع ہے. اسی طرح ایک مشہور مسلمان دائی نے جرمنی کے شہر میونخ میں سکونت اختیار کی. جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ جرمن میں ایک بڑا سائن بورڈ لکھا گیا ہے, کیا تم یوکوہاما کی کفریات کو نہیں جانتے؟ اس دائی نے پاس میں ہی ایک اور سائن بورڈ لگا دیا اور اس پر لکھ دیا, کیا آپ اسلام کو نہیں جانتے؟ اگر اس کی معلومات چاہتے ہیں تو فلاں فلاں نمبر پر رابطہ کریں. اس کے بعد تو جرمنی کے طول و عرض سے فون ان پر ٹوٹ پڑے, حتیٰ کہ ان کے ہاتھ پر ایک سال کے اندر اندر 1,00,000 سے زیادہ جرمن مسلمان ہو گئے, جن میں مرد و عورت دونوں تھے. انہوں نے ایک مسجد, ایک اسلامی مرکز اور ایک درس گاہ بنائی. انسانیت حیران و سرگشتہ ہے, اس کو اس عظیم دین کی ضرورت ہے جسے امن, اطمینان اور سکون دے سکے. یہ جملہ تو میرے دل کی پکار ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آپ کے اس کتنی بڑی دولت ہے جس کو ہم مل مار کے بیٹھے ہوئے ہیں. شیئر کیجئے, آسک می اباؤٹ اسلام, یہ ہر مسلمان کا سلوگن ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے ان کو جو اس کی خوشنودی چاہتے ہیں, سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور انہیں اندھیروں سے نکال کر اجالا دکھاتا ہے, اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں کم لوگ ہی شکر گزار ہیں جو مطلب شکر کریں, اور اگر تم لوگوں کی اکثریت کی بات ماننے لگو تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. یہ ظن اور گمان کی پیروی کرتے ہیں, زیادہ تر لوگ ایمان لانے والے نہیں اگرچہ تمہیں اس کی آرزو بھی ہو. ایک عالم نے پوچھا کہ ایک سوڈانی مسلمان بادیا سے راجدھانی, یعنی بادیا کہتے جنگل, راجدھانی خرطوم آیا. ان دنوں انگریزی استعمار کا دور تھا. شہر کے وسط میں ایک برٹش ٹریفک مین کو دیکھ کر لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب میں بتایا کہ یہ کافر ہے. کہنے لگے یہ کس کا کفر کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کا. اس نے کہا کیا کوئی اللہ کا کفر بھی کر سکتا ہے؟ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہہ کی جو دیکھا اور سنا تھا اس پر نعوذ باللہ پڑھتا ہوا بادیا کی طرف لوٹ آیا, اور کیا ہے قرآن میں, انہیں کیا ہوا یہ ایمان نہیں لاتے. اسمائی کہتے ہیں کہ ایک عربی نے کسی قاری کو پڑھتے سنا فہو رب السماء والارض انہ الحق مثل ما انکم تنتقون, زمین و آسمان کے رب کی قسم یہ ایسے ہی حق ہے جیسے تمہارا بولنا. عربی یہ سن کر بولا سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کو کس نے قسم کھانے پر مجبور کر دیا, یعنی ضرورت ہی نہیں تھی اس کی. یہ حسن ظن ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسان اور لطف و کرم اور رحمت کی امید ہے. صحیح حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یضحک ربنا, کہ ہمارا رب ہنستا بھی ہے. عربی کی زبان کہے کہ ہمارا رب ہمیشہ رہے جو خیر کی ہنسی ہنستا ہے. پھر اسی طرح قرآن پاک میں آتا وہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے, جبکہ لوگ اس سے مایوس ہو جاتے ہیں. بلا شبہ تمہارے رب کی رحمت محسنین سے قریب تر ہے. جان لو کہ اللہ کی نصرت جلد ہی آنے والی ہے. جو شخص لوگوں کی سوانح اور تذکرہ رجال کا مطالعہ کرے گا وہ اس سے کئی حقیقتیں دیکھے گا, یعنی کئی مسلمات سیکھے گا. مثلا انسان کی قدر و قیمت اس کے اچھے عمل میں ہے, یہ حضرت علی کا قول ہے. مفہوم یہ ہے کہ انسان کی صورت اس کے روپ یا منصب سے اس کی پہچان نہیں ہوتی, اس کی امتیازی شان تو اس کے علم, ادب, عبادت, کرم اور اخلاق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے منہ بنایا اور تیوری چڑھائی اس وجہ سے کہ ان کے پاس اندھا آ گیا, سورۃ عبس کی ابتدائی آیات ہے. ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں مشرک لگے. اس بات کا یقین آ جائے تو ہمارے رشتوں کے معیار نہ بدل جائیں. اسی طرح جتنی انسان کی ہمت, قربانی, اس کا اہتمام اور انفاق بھی سبیل اللہ ہوگا اتنی اس کی قیمت ہوگی. بلندی یوں ہی نہیں مل جاتی. بلندی کوئی کھجور نہیں. اگر یہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے ضرور تیاری کر لیتے. اللہ کے راستے میں جہاد کرو جتنا کہ حق ہے جہاد کا. پہلی آیت سورۃ توبہ کی اور یہ سورۃ البقرہ کی. بات یہ کہ انسان اپنی تاریخ خود بناتا ہے, اچھے برے اعمال سے خود اپنی زندگی لکھتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے اعمال اور حرکات کو لکھ رہے ہیں. چوتھی بات یاد رکھیے کہ انسان کی عمر تھوڑی سی ہوتی ہے, اس کی زندگی جلد ہی ختم ہو جاتی ہے. उजलत यानी जल्दी में चली जाती है, तो गुनाहों तफक्कुरात और रंजो अलम से इसको और कम ना करे। वो लोग नहीं रहे मगर एक शाम या एक चाश तक, उन्होंने कहा हम तो बस एक दिन या इसका कुछ हिस्सा रहे, गिनने वालों से पूछ लीजिए। और शायर कहता है कि गम के लिए तो ये काफ़ी है कि जिंदगी कड़वी है और कोई ऐसा अमल पल्ले में नहीं जिससे अल्लाह को खुश किया जाए। तो क्या सीखा? इस्लाम की दौलत सीने में, कहिए अल्हम्दुलिल्लाहि अला नेमतिल इस्लाम। जब नेमत इस्लाम की है ना, तब चाहे जिस्म का एक कुछ भी सलामत ना रहे, हमें कोई गम नहीं होना चाहिए कि दुनिया की सबसे कीमती दौलत तो मिल गई है ना। और इस्लाम क्या है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत, किसी को शरीक नहीं बनाना, नमाज कायम करनी, ज़कात देनी और रमज़ान के रोज़े रखने। सही बुखारी की हदीस 50 में अल्लाह के नबी ने ये बता दिया। इसी तरह इस्लाम की पहचान कैसे होगी? सबसे बड़ी बात है, इसको सबसे पहले नेमत समझिए, अल्लाह का एहसान समझिए और मोमिन का ख़जाना समझिए और जन्नत की चाबी समझिए। क्योंकि बिन मांगे मिल गई ना, तो एहसास नहीं है आज हमें। इसी तरह अल्लाह की निगाहों में इस्लाम का क्या मुकाम है? इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, आल इमरान 19 आयत 85। आल इमरान में ही है, वमें यबतगी गैर अल इस्लामी दीना, जो इस्लाम के सिवा कोई और दीन ले तो उसका दीन तो कबूल ही नहीं होगा और आखरत में नुकसान पाने वालों में होगा। और आल अनाम 125, जिसको अल्लाह हिदायत देना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोलता है और जिसे चाहता है कि गुमराह कर दे उसका सीना तंग और घुटा हुआ कर देता है। तो ये सारी बातों के बाद आखिरी बातें आज के सेशन की, हमसे मतलूब क्या है? देखिए, वक्त की अहम ज़रूरत है कि लोगों को इस्लाम दिया जाए, अहम तरीन ज़रूरत है लोगों की आज के दौर में इस्लाम, फ़ोन और कंप्यूटर से भी ज़्यादा। माशरे में मौजूद नाइंसाफियों का इलाज इस्लाम से होगा, ज़ाती और इज्तमाही मसाइल का हल इस्लाम में है। बायस सुकून है ये, इंसान की हर परेशानी का हल, डिप्रेशन का इलाज, अल्लाह का कुर्ब, दिल की ज़िंदगी है। करें क्या कि इस्लाम के अलम्बरदार बने, आज से इस्लाम का झंडा पकड़ के खड़े हो जाए, एम्बेसडर ऑफ इस्लाम बनिए, इस्लाम को अपनी ज़ात पे लागू करें, सबसे पहला ये काम है। इसके बाद फिर दूसरों को इस नेमत से रोशनास कराएं, अपने दिल के सुकून और खुशी के ज़रिए लोगों को दिखाइए कि मुसलमान गम नहीं करते, खुश होते हैं। सिलसिले सहीहा की रिवायत है 3679, ये दीन वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक रात और दिन का सिलसिला जारी है। अल्लाह ताला कोई शहरी और देहाती घर नहीं छोड़ेगा, मगर इसमें अजीज़ की इज्जत और आबरू के साथ या जलील की तौहीन और जलालत के साथ दीन को पहुंचा देंगे। इज्जत वो है जो इस्लाम के साथ मिले और जिल्लत वो है जो के कुफर के साथ मिले। तो दिल की गहराई से कहिए अल्हम्दुलिल्लाही बिनेमतिल इस्लाम। जज़ाकल्लाह खैर। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।